लाल की बरसान की दाई गौर प्रेमानंदे। तो आज के इस 7 फरवरी के सायंकाल के सत्संग में आप सबका स्वागत है। कुछ लोग नए नए आए हैं, उनका भी बरसाना में स्वागत है। डॉक्टर सचिन और हमारे बीएससी के स्टूडेंट्स, आज पहली बार बरसाना धाम में आपका सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। बड़े ही भाग्य से सबको श्री बरसाने का वास मिलता है। हाँ, कोई भी यहाँ पर ट्रेन का टिकट निकालकर टैक्सी कर नहीं पहुंच सकता है। राधा रानी बुलाएगी तभी आना होगा। बहाने अनेक होते हैं, कैंप का बहाना है, किसी कम्युनिटी पोस्टिंग का बहाना है, लेकिन राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना है, इसलिए हम लोग सब यहाँ बैठे हैं। तो कल हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की जो वृंदावन भेंट है उसको पार्ट 1 कर दिया था। फिर जो नए लोग आए हैं उनके लिए थोड़ा संक्षेप में कल का रिकैप करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और राधा रानी का जो उन पर प्रेम है उसको अनुभव करने के लिए कृष्ण भगवान राधा रानी का भाव लेकर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। राधा रानी जो प्रेम करती है भगवान पर, उसकी था भगवान को पता नहीं। भगवान सब कुछ जानते हैं, सब ज्ञान सब नॉलेज उन्हीं की ओर से आता है, लेकिन फिर भी वो आनंद जो राधा रानी को प्राप्त होता है उनकी भजन उनका भक्ति करने से, वो क्या है उनको पता नहीं। तो वो जानकारी करने के लिए श्री कृष्ण भगवान राधा रानी का हृदय का भाव प्रेम भाव भक्ति भाव लेकर कलयुग में आते हैं और उनके अंदर जो आकर्षण है जो राधा रानी को आकर्षित करता है वो भी आकर्षण क्या है उसका रहस्य जानने के लिए प्रयास करते हैं। तो साथ साथ ये तो दोनों अंतरंग उद्देश्य हैं और बाह्य उद्देश्य है कि सब लोगों को हरि नाम का वितरण किया जाए, भगवान के नाम का वितरण किया जाए। जो बांसुरी बजाकर उन्होंने कृष्ण अवतार में सबको आनंद दिया, वही आनंद वो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को सबको वितरित करके देना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल चैतन्य महाप्रभु की जो सफर है वृंदावन की, वो काम्यवन से होकर अभी नंदगांव में पहुंची है। नंदगांव वो भगवान का दिव्य धाम है जहां पर भगवान बलराम जी के साथ अपने माता पिता यशोदा और नंद महाराज के साथ निवास करते हैं नंद भवन में, और वहां पर शंकर जी महाराज पर्वत बने बैठे हैं और नंदीश्वर उनका नाम है, नंदीश्वर पर नंद भवन विराजमान है। नंद भवन में कृष्ण भगवान बलराम जी का मूर्ति है, दोनों मुरली बजा रहे हैं, दोनों सांवले रंग के हैं, कृष्ण के साइड में यशोदा रानी खड़ी है, बलराम जी के साइड में नंद महाराज खड़े हैं, फिर यशोदा माता के उस साइड में राधा रानी खड़ी है दुल्हन बनके, और नंद बाबा के उस साइड में धन सुखा मन सुखा यानी श्रीधामा और मधु मंगल खड़े हैं, और नीचे बांके बिहारी जी का विग्रह है, शालिग्राम जी का विग्रह है, सुंदर मनोहारी दृश्य है। तो नंद भवन में जब नंद गांव में भगवान सबसे पहले आए तो उन्होंने हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलते रहो।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने पावन सरोवर में स्नान किया। चैतन्य महाप्रभु का जो पूरा वृंदावन यात्रा है उसके उसका लाभ ये भी है कि हम भी उन स्थानों को मानसिक रूप में दर्शन कर रहे हैं। हा? पवन सरोवर कौन सा स्थान है? पवन सरोवर में साक्षात त्रिवेणी जो धाम है इलाहाबाद, यहाँ पर तीन नदियां एकत्र होती हैं, वो स्वयं जो प्रयागराज कहते हैं उसको, प्रयागराज, वो स्वयं प्रयागराज जो व्यक्ति हैं वो पवन सरोवर में आके स्नान करते हैं। जो जीवन भर साल भर सब लोग वहां पर स्नान करके अपना पाप छोड़ते हैं, तो पाप से बहुत सारा वॉल्यूम पाप का भरकर फिर प्रयागराज स्वयं अपने आप को पाप से साफ करने के लिए कहां थे? पवन सरोवर। उसका नाम है पहले नंद सरोवर, लेकिन जब अक्षय तृतीया के दिन प्रयागराज वहां पर आके स्नान करते हैं तो नंद बाबा अपना प्रयागराज जाने का प्लानिंग कैंसिल कर देते हैं। तो प्रयागराज स्वयं आके यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, तो मैं वहां को भी जाऊंगा। वो बाद में देखते हैं कि सारी नदियां भी वहां पर स्नान करते हैं, गंगा जी, सरस्वती, कावेरी और भीमा नदी, सिंधु, नर्मदा, सब नदियां वहां पर आके अक्षय तृतीया के दिन स्नान करती है। अक्षय तृतीया आएगी गर्मी शुरू होने के पहले। तो इस सुंदर पावन सरोवर, उसका नाम पड़ा पावन सरोवर जब ये घटना हुई, तो इस पावन सरोवर पे कृष्ण भगवान अपनी गायों को और बछड़ों को पानी पिलाने के लिए लेके आते हैं और खुद भी क्रीड़ा करते हैं। ऐसे कहा गया है कि पावन सरोवर भगवान का साख्य लीला का सर्वोत्तम सर्वप्रिय स्थान है। साख्य लीला मतलब दोस्ती, जैसे ग्वाल वालों के साथ में वो गाय चराते हैं, मजाक करते हैं, खेलते हैं, तो उनका खेल है, उस खेल के लिए पावन सरोवर का सबसे प्रिय स्थान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पावन सरोवर में स्नान किया। नंदगांव में कुल 56 कुंड थे, आज कुछ 8-10 ही बचे, बाकी सब लुप्त हो गए, सूख गए, फिर जीर्ण हो गए, फिर टूट गए, फिर जमीन बन गई, जमीन के बाद फिर वहां पर कुछ बिल्डिंग बने, घर बना, ऐसे बहुत सारे स्थान जो है लुप्त हो गए। रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि वृंदावन धाम में 60 बिलियन पवित्र स्थान है, कितने? 6,000 कोटि, जहां पर लीला स्थली है, लीला हो गई भगवान की। लेकिन सब कलियुग के प्रभाव से धीरे धीरे लुप्त होने लगे। आज हम आए हैं 2012 में, यहाँ पर कुछ स्थान नजर में आ रहे हैं, कुछ स्थान खो चुके हैं। जब हम अपने बालकों को लेकर आएंगे और 50 साल के बाद में बड़े बूढ़े होकर, हाँ आएंगे ना आप लोग? हाँ आते रहना, अभी ये शुरुआत है कभी, एक बार रोज का चस्का लग गया फिर अंतिम समय तक यहाँ पर आते रहना है, और हो सके तो यही बस जाना है अंतिम समय पर, ताकि शरीर भी यही छूटे। तो जब तब आएंगे तब क्या होगा, तब और भी स्थान नष्ट होते हुए नजर आएंगे। आप कहेंगे हम जब 2012 में आए थे ना यहाँ पर दर्शन किया था, अब यहाँ पर कुछ नहीं। तो मेरा भी ऐसा अनुभव है, मैं जब 25 साल पहले यहाँ पर पहली बार आया था, 26 साल पहले, तो कुछ कुछ स्थान का दर्शन हमने किया था, लेकिन अभी वो नजर नहीं आ रहे, यहाँ पर जमीन हो गई। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे हृदय से, सच्चे हृदय से, अच्छी भावना से, हृदय पूर्वक इन स्थानों का श्रवण कीर्तन दर्शन करना चाहिए, ताकि इसका लाभ हमको मिल सके। तो 56 कुंड थे, उसमें से एक कुंड का नाम था छाछ कुंड। अब पता है कुंड कैसे बना? नंद भवन में यशोदा रानी रोज दही लगाती थी, जमाती थी, फिर मंथन करके मक्खन निकालती थी, और इतना छाछ बनता था, इतना छाछ बनता था कि नंद भवन से तो वो बहता था पूरा, वो बहते हुए छाछ से कुंड बना एक्सेस, जो मंथन करते करते गिर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है ना, वो छाछ जो नंद भवन से गिरता था वो नीचे आकर छाछ कुंड बना। कितना वैभव था उस समय, उत्सव के अंदर लोग मक्खन, दही, दूध एक दूसरे पर फेंका करते थे, कोई लिमिट नहीं था उसके अंदर, अरे महंगा है, 1,000 रुपए किलो है, थोड़ा सा संभाल के फेंको, इतना ही बजट है, इतना ही फेंकना है, ऐसा कुछ नहीं था उधर, इतना समृद्धि था। 9 लाख तो गाय थी उनकी नंद बाबा की, बाकी सब बालों की अलग गाय थी। इतना गोधन था, इतना गोधन था कि अभी आश्चर्य होता है कि इतना सारा गोधन रखते कहां थे, तो गौशाला कितनी बड़ी, घुमाने के लिए जगह कहाँ थी, घास कहाँ खाते थे, कहाँ पर चढ़ते थे, कहाँ खेलते थे, कहाँ कूदते थे, और कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि बहुत ट्रैफिक जाम हो गया था, सब गाय नंद बाबा की जब रात को लौट रही थी तो सब गाड़ियां रुक गई थी, जब तक ये ग्वाल बाल कृष्ण भगवान घर पे नहीं पहुंचे तो ट्रैफिक जाम वैसा ही रहा, ऐसा कभी न्यूज नहीं आता है उसका। तो यही भगवान की लीला का गौरव है, हम ये समझ नहीं सकते कि कैसे हो सकता है। क्या पढ़ते हैं हम लोग कि रोज गोपियां बरसाने से दही दूध लेकर मथुरा में जाती थी चलकर बेचने के लिए। कितना किलोमीटर है वो? 50 किलोमीटर है यहां से। तो अभी भी चलेंगे तो कितना घंटा लगेगा आपको? और वहां पे जाके बेच के वापस लौट के भी आना है, वहीं रहना नहीं है मथुरा में। तो ये सब जो है ना, ये दिव्य चीजें हैं। उसका प्रश्न हमने पूछा था एक बार, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो ब्रज भूमि है वो कमल की तरह है, कमल खिलता है और बंद हो जाता है, खिलता है और बंद हो जाता है। जब जाना होता है बरसाने से तो बरसाना यहां पर है नंदगांव, यहां बरसाना मथुरा यहां पर है, पास में आ जाता है, तो जाना है तो दूर हो जाता है भगवान की इच्छा से। ये कमल जो ब्रज का है, ब्रज कमल भगवान की इच्छा से खिलता है और बंद हो जाता है, लीलाओं को सहायता करने। ये ब्रज धाम स्वयं बलराम जी है, भगवान की लीला के लिए जो अनुकूल है वो यहाँ पर वातावरण उत्पन्न हो जाता है। चाहे वो ठंडी का मौसम हो तो बरसात भी आ सकती है, बरसात का मौसम हो तो ठंड आ सकती है, जब चाहे उष्णता आ सकती है, जब चाहे ठंडक आ सकती है, जैसे भगवान की इच्छा वैसे हो जाता है। सारे ऋतु जो है वो व्यक्ति हैं, वो भगवान की सेवा करते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करके प्रकट करके भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं। ऐसा ब्रज भूमि का आनंद है। सब कुछ यहाँ पर, हवा, सूर्य प्रकाश, हवा का जो झोंका है, फूलों का खुशबू है, कौन से फूल खिलने वाले हैं, कौन सा पेड़ पर कौन सा रंग के फूल आएंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर भगवान की इच्छा से होती है। तो भगवान की इच्छा के अनुसार भी बलराम जी, वृंदा देवी और सखियां, गोपियां सब बाकी का आयोजन करती है। पंछी भी ऐसा गीत गाते हैं समय के अनुसार, ऐसा भव्य दिव्य यहाँ पर वातावरण, उसी को याद करने के लिए, समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। कैसा प्रेम है हर वस्तु का, यहाँ का पेड़ का, पंछी का, भवरे का, घास के पत्ते का, बेली का, फूल का, फल का, खरगोश का, मोर का, तोते का, हिरन का, सब लोग, गाय, बैल, भैंस, बकरी, सब भगवान के साथ थे। तो मैंने छाछ कुंड के बारे में बताया, इससे समझाया आपको कि ये वैभव था ब्रज भूमि का, कोई कंजूसी वहां पर कोई कमी नहीं थी। तो भगवान ने सारे 56 कुंडों में स्नान किया, फिर वो नंद भवन के पर्वत पर चढ़ने लगे। और जब वो वहां पर चढ़ने लगे तो पूछने लगे, तो स्वयं कृष्ण हैं जिन्होंने कृष्ण अवतार में लीला किया है वहां पर, वो अपनी लीला के बारे में वहां के ब्रजवासियों को इंक्वायरी करने लगे कि यहाँ पर कृष्ण बाबा, कृष्ण भगवान का कुछ कुंड था, कुदर है, क्योंकि वहां पर एक कुंड था उसका नाम है कृष्ण कुंड, अभी भी है वो। एक कुंड है यशोदा कुंड, जहां पर यशोदा कृष्ण भगवान को जब वो छोटे से थे तो अपने कुंड में उनको नहलाती थी, कृष्ण और बलराम। जब बड़े हो गए तो उनको लगा कि मैं बड़ा हो गया, अभी मेरे लिए सेपरेट कुंड चाहिए, तो फिर कृष्ण कुंड बनाया। ऐसे होता है ना, मम्मी मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, अभी मैं अपने आप कपड़े पहनूंगा, अपने आप नहाऊंगा, मुझे अभी तुम मत नहलाओ, ये शर्म आती है। तो इस तरह से यशोदा कुंड से उनका ट्रांसफर हो गया कृष्ण कुंड में। तो कृष्ण कुंड भी है, वो सब इंक्वायरी करने लगे कि कहां पर है, बड़े व्याकुल होकर, बड़े आतुर होकर, कैसे लीला है, देखो स्वयं भगवान वही आ रहे हैं यहाँ पर, तो वही भक्त बनकर अपने भगवान की पूछताछ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि पहाड़ पर ना एक गुफा है, उसके अंदर कुछ मूर्तियां हैं, जाके दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु फिर पहाड़ पर गए और उन्होंने वो गुफा को ढूंढ के निकाला, और वो गुफा के अंदर 3 मूर्तियां थी। एक ऐसे मोटे वाले तगड़े पुरुष की मूर्ति थी, एक ऐसी थोड़ी सी थोड़ी उम्र वाली माता जी ऐसी थोड़ी मोटी सी गोरी सी ऐसी मूर्ति थी, और बीच में सांवले रंग की छोटी सी बालक की मूर्ति थी। तो समझ गए कि ये नंद बाबा, यशोदा और कृष्ण भगवान की मूर्ति। चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर हो गए यशोदा को छूकर बात करने लगे, नंद बाबा को छूकर बात करने लगे, कृष्ण भगवान को छूकर बात करने लगे। सब प्रकार से समझ गए कि ऐसा प्रेम नंद बाबा और कृष्ण के, यशोदा मैया के प्रति केवल कृष्ण को हो सकता है, और कोई ऐसा पास में जाकर इतना प्रेम से उनके वार्तालाप, गुप्त वार्तालाप नहीं कर सकता है, उनको उनका ही बालक होना चाहिए तो ही वो कर सकता है। तो वो समझ गए कि कृष्ण भगवान दोबारा आ गए हैं नंदगांव में दर्शन देने के लिए, और उनका प्रेम और आदान प्रदान और वार्तालाप देखकर सब लोग व्याकुल हो गए, प्रेम विवल हो गए, और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत देर तक प्राइवेट वार्तालाप करने के पश्चात बहुत सुंदर कीर्तन किया उस गुफा में। तो वही जो नंद बाबा की मूर्ति है वो फिर आप बाद में फिर उसको आज के जो मंदिर है वहां स्थापन किया गया और बाद में बलराम जी का विग्रह भी वहां पर लगाया गया। फिर नंद बाबा के दर्शन करने के बाद कीर्तन करने के बाद नरसिंह मंदिर गए, वहां पर एक नरसिंह मंदिर है। कृष्ण भगवान को सब संकट से बचाने के लिए नंद बाबा हमेशा नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते थे, प्लीज प्रोटेक्ट माय चाइल्ड। नरसिंह बाबा का मंदिर वहां पर भी है, उधर वराह नरसिंह मंदिर भी है, उधर भी नंद बाबा प्रार्थना करते थे। उनके पुत्र स्वयं भगवान है लेकिन वो जानते नहीं कि उनके पुत्र भगवान है। ये तो लीला है सब कुछ। यहां पर अगर भगवान वो भगवान है ये बोलना चाहते हैं, कोई भी जगह ऐसी होनी चाहिए ना कि सब जगह लोग भगवान भगवान का दंडवत करेंगे तो बोर होता ना आदमी। सब जगह पूजन हो रहा है, सब जगह श्लोक गाए जा रहे हैं, यज्ञ किया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है, श्लोक व गीत और सब गाया जा रहा है, सब उनकी पूजा अर्चा हो रही है, सब दंडवत कर रहे हैं, तो कभी कभी इसको ब्रेक चाहिए, ब्रेक। आई वांट टू हैव सम ब्रेक, जहां पर मुझे कोई पहचानता नहीं है। हमारे तो फिल्म स्टार है, हमारे क्रिकेटर्स हैं, सब जगह जाते हैं, जहां पर जाते हैं उनके पीछे लोग लग जाते हैं, फोटोग्राफर्स और न्यूज रिपोर्टर्स, तो वो कहां जाते हैं, कहीं टिम्बक्टू में चले जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, जहां पर कोई जानता नहीं होता, तो खुलेआम घूम सकते हैं। तो वैसे भगवान भी सब दुनिया में निर्माण में सृजन में क्रिएशन में सब जगह उनको ही लोग प्राप्त करना चाहते हैं, उनके चरणों की धूल चाहते हैं, उनका श्लोक गान कर रहे हैं, गीत गान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए। तो वो चाहते हैं कि ऐसी जगह जाऊं जो मेरा खुद का घर हो, यहां पर कोई जानता नहीं मुझे कि मैं कौन हूं। कुछ डॉक्टर्स हैं यहां पर, कुछ मैनेजर्स हैं, कुछ शायद प्रधानमंत्री देश का कोई होगा, लेकिन घर जाने के बाद वो ऐसा नहीं प्रधानमंत्री बन जाता नहीं घर पे, वो हो सकता है उनको अपनी पत्नी की डांट भी सुनती हो, सुननी पड़ती होगी घर पे, हु नोज। हाँ, जॉर्ज बुश या तो अपने बराक ओबामा, उनको मिशेल माता जी बोलती होगी क्या तुम सिगरेट पीती हो, कुछ शर्म नहीं आती तुमको, हेल्थ खराब हो, कैंसर हो जाएगा, फिर तो मैं नहीं देखूंगी तुमको तुम कैंसर होने के बाद। ऐसे घर में वार्तालाप होता होगा प्राइवेट में, हु नोज। तो घर जाने के बाद में वो केवल माता पिता बालक और पति इस रूप में ही काम करते। हम भी चाहते नहीं कि हम अपना मैनेजर का डायरेक्टर का पोस्ट टोपी पहन के घर जाए और वहां पर भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन का कौशल्य दिखाएं। घर में हम लोग वॉन्ट बी इजी सिंपल, जस्ट हमारी बच्ची आके सर पे चढ़ जाएगी, पटकेगी, मारेगी सर पे, टोपी निकालेगी, और किसी पिताजी को टक्कल होगा तो टक्कल पे हाथ मारेगी। मतलब वो अपना घर का वातावरण कैसे होता है, एकदम खुला फ्री प्रेम का वातावरण, कोई ऐसा पोजिशन पोस्ट और डेजिग्नेशन ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान भी हमारे जैसे ही है क्योंकि हम उनके जैसे हैं, उनका ही वो जो गुण है वो चाहते हैं, इसलिए भगवान भी यहां पर ब्रजभूमि में आते हैं। सबसे पहले सब ऐश्वर्य छोड़ देते हैं, उनका जो षड ऐश्वर्य है, चतुर्भुज है, दो भुजा तो पूरे छोड़ के आते हैं, वैकुंठ में चार भुजा लेकर घूमते हैं, यहां पर दो भुजा छोड़ के आते हैं, चप्पल छोड़ के आते हैं, यहां पर चप्पल ही नहीं पहनते, नंगे पैर घूमते, कोई अलंकार कोई ऐश्वर्य कोई मुकुट वगैरह कोई राज वस्त्र पहन के नहीं आते यहां पर, कोई रथ नहीं है उनका, यहां पर घोड़े नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही घूमते हैं पैदल। हाँ, ब्रजवासियों की रोटी खाते हैं, छाछ पीते हैं, मक्खन खाते हैं, माता के गोद में घुसते हैं, आकाश में बिजली कड़कती है तो भाग भाग के उनके गोद में आते हैं, जो साक्षात भय उनसे भयभीत है। हाँ, वो माता के गोद में कब आते हैं तो आकाश में बिजली कड़कती है तो चोरी करके माखन नहीं मिलता है तो गोपियों के घर में जाकर उनके बालकों के कान में पानी डालते हैं, नहीं तो उनको चिमटा निकालते हैं, उनके पलने में बालक सोए हुए हैं, मक्खन नहीं मिल रहा है तो गुस्सा आता है तो बालक को चिमटा करके रुलाते हैं तो भाग जाते हैं, और कभी कभी मूड आ गया तो मक्खन नहीं मिला, चोरी करने को कुछ मिला नहीं तो फिर वहां पर पेशाब कर देते हैं उनके घर में, चले जाते ऐसे वो एकदम सिंपल बनकर रहना चाहते हैं, एक अनोखा आनंद लेना चाहते हैं। तो वही भाव है उनका, कोई जानता नहीं यहां पर उनको। नंद बाबा क्या कर रहे हैं, विष्णु का पूजन कर रहे हैं इनकी रक्षा करने के लिए। विष्णु का जो अवतार है, विष्णु भी इनके अवतार है, और विष्णु के 10 अवतारों में से एक नरसिंह भगवान वराह भगवान है, उनको पूजन कर रहे हैं कि हमारे बालक की रक्षा करो, कोई राक्षस उनको आतंक से कष्ट ना दे, कोई पीड़ा ना दे, ये ब्रिज कर रहे हैं। ऐसे राधा रानी को उनको जानता नहीं कि ये भगवान की परम अंतरंगा शक्ति है, सब कहते हैं हमारी सखी है, हमारी फ्रेंड है, घूमना है, श्रृंगार करना है, नृत्य करना है, नाचना है, कूदना है, मंथन करके मक्खन बनाना है, कृष्ण को रुझाना है, उनको मिलना है छुप छुप के। देखो कृष्ण से प्रेम करते तो जानते नहीं कि ये परम भगवान है, परमात्मा है, सब सृष्टि का निर्माण करता है, ऐसे कोई जानता नहीं। तो नरसिंह मंदिर गए चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद उस कुंड में गए जहां पर यशोदा रानी कृष्ण भगवान को साथ में लेकर स्नान किया करती थी यशोदा कुंड में। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु नंद बैठक गए। नंद बैठक कौन सी जगह है? नंद बैठक पहाड़ पर नहीं है, जमीन पर है, पहाड़ के नीचे। इसका रहस्य ऐसा है कि जब दिन में चले जाते हैं भगवान गाय चराने के लिए तो शाम को लौट के आते हैं सूरज ढलने के बाद में। तो जब वो लौट के आते हैं तो उनकी मुरली बजती है ना, आवाज आते कि आ रहे दूर से आ रहे हैं। जो लोग व्याकुल हो जाते हैं वो पहाड़ पर चढ़कर आने तक इनको धैर्य नहीं है, वो लोग नीचे उतर आते हैं। यशोदा रानी, नंद महाराज, कुछ सखियां नीचे आके एक जगह बैठ जाते हैं। इतने व्याकुल है कि यशोदा रानी दोपहर के बाद में बार बार खिड़की के बाहर आके देखती है कि सूरज ढला के नहीं, सूरज ढला के नहीं, कब आएगा कृष्ण मेरा, प्रार्थना कर सूरज जल्दी ढल जाओ कि मेरा पुत्र लौट के आएगा। व्याकुल हो रही है, आगे पीछे करते रहते दोपहर के बाद में। जब वो सूरज बहुत सा नीचे आ गया, पूरा नीचे नहीं आ गया, लेकिन उसके पहले ही सब सखियों को बोलते चलो चलो थाली तैयारी करो, थाली बनाओ, उसमें दीपक लगाओ, फूल लगाओ, कुमकुम गुरु चंदन सब लगाओ, मिठाई रखो, मक्खन रखो, चलो तैयारी करो, सब लोग करो, पानी लेके चलो, सब कुछ चलो, दूध लेके चलो, सब लोग नीचे जाते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं। फिर उनकी मुरली की आवाज तेज और तेज और पास में आती है। वहां पर भाग के कृष्ण भगवान और बलराम जी नंद महाराज के गोद में बैठ जाते हैं, उनको बहुत चूमते हैं, दुलारते हैं, गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। यशोदा रानी आती है, रोहिणी मैया आती है, सब उनको प्यार करते हैं, मुंह में मक्खन खिलाते हैं, मिठाई देते हैं, पूछते क्या क्या हुआ, बता ऐसे हुआ आज ऐसे हुआ, हमने पंछियों के साथ में खेल किया, बंदरों के साथ में खेल किया, गाय के पीठ पर चढ़े, हम इसके पेट पर चढ़े और शाखाओं से चढ़े, पेट पर पेट से यहाँ से वहां कूदे, ऐसे किया वैसे किया, पता है वो गेंदा गुम हो गई थी, हमने जमुना जी में छलांग लगाया, फिर मैंने गेंद लाया, ऐसे डिस्कशन होता है। फिर सब लोग गीत गाते हुए सब लोग नंद भवन पे ऊपर चढ़ते हैं, फिर उनको नहलाते हैं, फिर उनको फिर मक्खन खिलाते हैं, लोहरी सुनाते हैं, फिर सुला देते हैं। तो नंद बैठक को भी जहां पर कृष्ण भगवान बलराम जी नंद बाबा यशोदा मैया को शाम को मिलते हैं, तो जगह पे चैतन्य महाप्रभु ने मिला, विजिट किया। इस तरह से यहाँ पर अनेक स्थान नंदगांव में यहाँ गोपियां आगे जाकर मिली है उनको, फिर कविता कुंड है, फिर नंद बाबा की गौशाला है, नंद बाबा की खिड़क भी है, पानी का स्टॉक है, वृंदा कुंड है, सब बहुत बहुत सुंदर स्थान को चैतन्य महाप्रभु दर्शन किया। फिर वहां से वो खदेरवन गए, खदेरवन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर छाता के रास्ते पर, और खदेरवन में भगवान ने बकासुर का वध किया। बकासुर जो है वो ना एक बदक के रूप में आया था, भाड़ जैसा बदक, उसको वो एक राक्षस था, उसको जाजरी मुनि ने शाप दिया अहंकार के वजह से, वो मछली खा रहा था, मछली खाने का बहुत दिल है, बदक बन जाओ, तो अहंकार चूर हो गया, तो माफी मांगने लगा। तो जाजरी मुनि ने कहा कोई बात नहीं, बदक तो बन गए, अभी तुम शाप तो मैंने दे दिया आपको, लेकिन जब कृष्ण भगवान आएंगे तो आपका उद्धार करेंगे, तो आप मुक्त हो जाओगे। तो यहां पर आया, बदक बन के माधव सरोवर के किनारे पे खड़ा रहा, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। वहां पर उपनंद बाबा जो नंद बाबा के बड़े भाई हैं, उनका भी जलाशय है, वहां पर उपनंद बाबा की गाय जो है पानी पीने आती है, भगवान भी वहां खेलने जाते हैं बाल लीला में, जब बालकों बछड़ों का देखभाल करते ना, वत्सपाल लीला बोलते हैं उसमें, भगवान वहां पर जाते हैं। तो वहां जाते हैं तो एक बार बकासुर को वहां पर वध कर देते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर भी भेंट दिया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु एक सुंदर स्थान पे गए, उसका नाम है शेषशाही, जो आज कोशी में है, कोशी यहां से 25 किलोमीटर दूर है। और कोशी का महत्व यह है कि नंद बाबा का कोष था ना, कोष ट्रेजरी, उनका धन वहां पर वो रखते थे, पूरा उनका सिस्टम था, वहां पर उनका ट्रेजरी वहां पर था, आज उसको कोशी कलां कहते हैं। तो कोशी यानी भगवान का पिताजी का कोष। और वहां पर एक बार कृष्ण भगवान ऐसे खेलने खेलने के लिए गए थे, तो विष्णु के रूप में वो कैसे क्या करते हैं, शेष नाग पर शयन करते हैं, है ना, पूरा शेषनाग का जो मुख है हजार फन का वो उसको छाया देता है, फिर वो उसका बेड बन जाता है, भगवान और विश्राम करते हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। ये दर्शन है ब्रह्मांड के अंदर जब विष्णु अवतार लेते हैं। तो एक दिन कृष्ण भगवान शेषशायी मतलब उस कोशी में गए और वहां पर शेषनाग प्रकट हो गए और कृष्ण भगवान विष्णु बनकर नहीं कृष्ण के रूप में द्विभुज रूप के अंदर जाकर लेट गए उसके अंदर। राधिका रानी लक्ष्मी बनकर नहीं, स्वयं राधिका रानी वो शेषनाग पर गई और उनके चरण दबाने लगी और बहुत सुंदर खुशबू आने लगी वहां से, बहुत सुंदर वातावरण उत्पन्न हुआ। तो उस स्थान पर अभी शेषनाग की मूर्ति जहां पर भगवान लेटे हुए हैं वो विष्णु नहीं है, वो स्वयं कृष्ण लेटे हुए हैं। तो भगवान की लीला है, राधा रानी ने बहुत भगवान के चरण कमल दबाते हुए ये विचार किया कि मैं चरणों को गले लगाऊं, छाती पर लगाऊं, लेकिन क्या सोचती है मेरी छाती तो बहुत कठोर है पत्थर की तरह, उनके कोमल चरणों को कष्ट होगा, इसलिए इतना मोह होने पर भी उन्होंने भगवान के चरणों को छाती पर नहीं लगाया, वही रख गया, वही दबाते रही। भगवान के चरण कमल जो है वो मक्खन से भी मुलायम है, लेकिन जब किसी राक्षस पर पड़ते हैं ना तो वज्र के समान कठोर हो जाते हैं, ऐसा है भगवान के चरणों का कमाल। तो उस स्थान पर भगवान ने ये लीला किया, वहां पर चैतन्य महाप्रभु किए और उस लीला को देखकर बहुत रोए, बहुत याद किया उस लीला को। और उसी स्थान पर जब कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने गोपियों के आग्रह पर, ये बहुत बात की लीला है, जब वो लौट के आए सब कुछ करके तो उन्होंने भगवान ने गोपियों की इच्छा के अनुसार वहां पर द्वारका को प्रकट किया। द्वारका में भगवान रोते थे गोपियों की याद में, ब्रज की याद में, यशोदा रानी की याद में, माता जी की याद में, सब रोते थे बहुत। तो उनके अश्रुओं से नदी बनी थी गोमती, उस गोमती को उन्होंने कुंड के रूप में यहां प्रकट किया। द्वारका में बहुत विशाल अरबी समुद्र है ना, बहुत विशाल, वो समुद्र भगवान ने कोशी में प्रकट किया है रत्नाकर कुंड के रूप में। उन सबका दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने किया, उसको स्नान किया, हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करते हुए नृत्य किया, सबको भाव विभोर बना दिया इस तरह से। और उनको लक्ष्मी का भी दर्शन वहां प्राप्त हुआ, ऐसे वर्णन होता है। उसके बाद वो खेलन वन गए, खेलन वन जो है वो वृंदावन की ओर है, वहां पर भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में बहुत अलग अलग प्रकार के अनोखे अद्भुत खेल खेला करते थे। वहां पर चैतन्य महाप्रभु गए, वहां पर उन्होंने कीर्तन किया। फिर वो भांडिर वन आए, भांडिर वन जो है वो जमुना जी के एक तरफ सात वन है और एक तरफ पांच वन है, और एक तरफ जो पांच वन है उसमें बेल वन, भद्र वन, भांडिर वन और मानसरोवर, इस प्रकार के वन है। तो भांडिर वन में बहुत सारी लीलाएं हुई है, भांडिर वन में सबसे बड़ी लीला ये हुई है कि भगवान ने राधा रानी के साथ विवाह किया है, और लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने विवाह किया है कि नहीं किया है। हाँ उसका उत्तर है और ना भी है, क्योंकि क्योंकि सबके लिए आम जनता के नॉलेज के लिए उन्होंने विवाह नहीं किया है, वो तो ऐसे ही थे प्रेम के कारण, लेकिन गुप्त रूप में छोटे छोटे रूप में नंद बाबा बालक को गोद में लेकर एक बार भांडिर वन गए थे, वहां से छोटे छोटे रूप में राधा रानी वहां पर आई, तो भगवान ने गोद वाले बालक को छोड़ दिया नीचे और दोनों आगे चले गए और तुरंत 16 साल की उम्र के बन गए। नंद बाबा चले गए, वहां पर बादल आए, तूफान सा होने लगा, नंद बाबा पीछे रह गए और दोनों बालक जो आगे चले गए, और जब भांडिर वन के अंदर चले गए दोनों 16 साल के बन गए। 16 साल के बन गए, आसमान से ब्रह्मा जी आए, बृहस्पति आए, इंद्र आए, वायु आए, वरुण आए, सब देवता आए, सब साधन सामग्री लेके आए, और बृहस्पति ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में ऐसा इच्छा किया कि इनका विवाह किया जाए। वहां पर एक वट का वृक्ष है, बड़ा बहुत सुंदर वृक्ष, इतना विशाल वट जो है ना मैंने कहीं देखा नहीं आज तक, ये दो मेरे हाथ है ना ये 10 बार मैं आगे फैलाऊंगा फिर भी वो पेड़ का साइज खत्म नहीं होता है, इतना बड़ा पेड़ है, बहुत विशाल, उसकी बहुत विशाल छाया है। उसके नीचे यज्ञ कुंड बनाकर बृहस्पति जी ने पुरोहित बनकर, ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर बृहस्पति के नेतृत्व में ये सब करके भगवान का विवाह किया। वहां पर विवाह होने के बाद में बहुत सारा ग्रंथि बंधन हुआ, गांठ बांधने का कार्यक्रम हुआ, फेरे हो गए, सप्तपदी हो गया, सब विधि हो गए। उसके पश्चात में माला पहनकर राधा कृष्ण ने बहुत देर वहां पर लीला किया, विहार किया वहां पर, और फिर बाद में बालक से छोटे बालक बन गए, वो नंद बाबा गोद में चले गए या अपने घर चले गए। ऐसी लीला वहां पर है,
सुंदर लीला।
तो वहां पर कृष्ण भगवान राजा रानी को मांग में सिद्धूर भरती हुई मूर्ति है, और वहीं पर बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया था, कृष्ण भगवान ने वत्सासुर का वध किया था, कृष्ण भगवान ने आग को पी लिया था। बड़ी लंबी लंबी कथा है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। तो इस स्थान में चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया, और वहां पर एक अद्भुत और एक वट भी है जिसका नाम है श्रीदामा वट। जब भगवान यहां से मथुरा चले गए तो श्रीदामा जी बड़े व्याकुल हो गए, अरे आप जा रहे हो, कब आओगे? उन्होंने कहा शांति उत्पन्न हो सकती है अभी। तो श्रीदामा ने कहा कब लौट के आएगी? भगवान ने कहा कि हम दो दिन के बाद लौट के आएंगे। दो दिन के बाद लौट के आएंगे तो उन्होंने कहा कि मैं यही रुकूंगा, जब तक आप नहीं आओगे तब मैं इसी पेड़ के नीचे रुकूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना सोऊंगा ना कुछ नहीं करूंगा, यहां वेट करूंगा आपका। पहले तो आप मत जाओ, लेकिन आप जाना ही है तो मैं यही वेट करूंगा, उपवास करूंगा, व्रत करूंगा। आप जानते हैं ना भगवान कितने दिन के बाद लौट के आए? एनी आइडिया कितने दिन के बाद भगवान लौट के आए? सखियों को पता नहीं है? हरे कृष्ण, वो आए नहीं, 112 साल बाद लौट के आए वो राजा बनकर। सो सीतामा जी वहीं खड़े थे, कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए, फिर सीतामा जी वहीं खड़े थे। चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए, जो भी कृष्ण है स्वयं, तो सीतामा को उन्होंने गले लगाया और अपने उस पोजीशन से मुक्त कर दिया। सीतामा जी धाम लौट के चले गए उसके बाद। वैसे ही पूछरी का लौटा नाम के एक ग्वाल वाल थे, वो भी बोले हो कह रहे आज तो आप जा रहे हो, कहां जा रहे हो? हाँ तो मेरा टर्न है, मेरे घर से प्रसाद आएगा आज, जब हम खेलने जाएंगे तो मेरे घर से रोटी आएगी, भोग आएगा। आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं मथुरा जा रहा हूँ, धनुर्यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। बलराम जी भी जा रहे हैं? अच्छा, तो जो मेरे घर में जो बना हुआ उसका क्या होगा? तो परसों खाएंगे उसको, आप दो दिन के बाद आएंगे। तो मैं आप यही बैठे रहेंगे, तो बाल बाल भी वहीं बैठ गया लोठा बाबा, उसको चैतन्य महाप्रभु ने मुक्त कर दिया। आज भी वहां पर मूर्ति है गोवर्धन के एंड में, पूछरी का लौठा बाबा कहते हैं उसे। वो दोनों हमको संयम सिखाते हैं, भगवान ने शब्द दिया है तो आएंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक हमको वेट करना है, कोई कंप्लेंट नहीं करना है, कोई गुस्सा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। उन्होंने कहा है ना आएंगे तो आएंगे, दो दिन में बोला होगा लेकिन आएंगे, नहीं आऊंगा ऐसे बोला था क्या? नहीं है ना, फिर आएंगे। इतना साल वेट किया पता है ना, शबरी ने भी ऐसे वेट किया था, 5 साल की थी वो, तब गुरु ने उनकी सेवा को प्रसन्न होकर बताया कि तुम्हें भगवान का दर्शन इस जन्म में होगा। तो ये बात सुनकर वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, इतना आनंद हो गया उसको कि वो सब कुछ भूल गई। वो गुरु महाराज चले गए आशीर्वाद देकर, जब वो चले गए तो होश में आई तो उसको याद आया, अरे पूछा ही नहीं कब मिलेंगे, मिलेंगे जरूर, कब मिलेंगे, लेकिन गुरु जी ने कहा है मिलेंगे। तो 5 साल की उम्र से 85 साल की उम्र तक वो रोज अपना रास्ता फूलों से सजाया करती थी, तो पता नहीं कब आएंगे, रोज की सेवा थी उसकी, रोज एवरी डे तैयारी करना कि आ जा सकते हैं। तो सब कुछ तैयार करके रखती थी वो, बेर बिनकर खा के रखती थी तैयार। तो वो गांव की लड़की थी, लम्बी औरत हो गई, अभी बुढ़ी हो गई, 85 साल की उम्र में जब उसके पैर थक गए, हाथ थक गए, दृष्टि भी ओझल हो गई, दांत गिर गए, सब ज्वाइंट्स छुक गई पेन से, एकदम धीरे धीरे सब फूल लगाती थी, तो अचानक दो दो और दो चार पैर आए वहां पर। जब वो झुककर फूल सजा रही थी, ऊपर उठ के देखा तो राम और लक्ष्मण थे भगवान, वो झूठे पैर खिलाए। लक्ष्मण को गुस्सा आने लगा, कह रही है तो खा के खिला रही है झूठा, ना भगवान को भोग लगाते सब लोग प्रेम से, और ये गांव की औरत गंवार औरत मुंह पे खा के झूठा झूठा खिला रही है। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी शांत रहो, लीला चलने दो, तो बताऊं आज का महत्व क्या। तो उसी समय वो परिपूर्ण हो गए अपनी सेवा में, उसी दिन प्रभु रामचंद्र के साथ कृपा सामने से कृपा से, उनकी कृपा से वो अयोध्या धाम चली गई, पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई उसको, भगवान के धाम में प्रवेश किया उसने। लेकिन कितना साल इंतजार किया? 80 साल इंतजार किया उसने, क्योंकि गुरु जी ने कहा था ना आएंगे, तो वेट कर रहे हैं। वैसे सीतामा ने भी इंतजार किया है, राधा रानी गोपियों ने भी इंतजार किया, क्योंकि सबको उन्होंने कहा था कि हम परसों आएंगे। एक गांव है यहाँ पर, कल कहा था मैंने गेंदोवा, कोई लोग हाट, ऐसे और एक गांव है पर नाम क्या है, पलसों। क्योंकि वहां पर जाके गोपियों ने उनको पकड़ा था दोबारा जाते वक्त, तो उन्होंने कहा कि हम परसों आएंगे, इसलिए उस गांव का नाम पलसों है। ऐसे अद्भुत जगह है। तो गोपियों ने भी रोज श्रृंगार किया है, रोज भोजन बनाया है, रोज पुष्प का मंडप बनाया है, पुष्प वितान बनाया है, पुष्प सैया बनाई है, पुष्प मालाएं बनाई है, रोज के रोज 100 साल तक उन्होंने ये सब किया हुआ है। उसके बाद में जब भगवान की उम्र 125 साल की हो गई, तब भगवान आए यहां पर, तब तो सब ग्वाल वाले से मरणासन्न हो गए थे, सब गोपियां ऐसे शरीर छोड़ने को तैयार थी। यशोदा बाबा, नंद बाबा, मैया, सब लोग ऐसे एकदम परेशान, अभी मर जाएंगे ऐसा था। उस लास्ट मोमेंट में भगवान आए दंत वक्र को वध करके, और सब लोगों को लेकर उन्होंने ब्रज में सैर किया, कोशी में द्वारका को उत्पन्न किया, उस समय दर्शन कराया उनको, और फिर और अधिक विधा को उन्होंने सुनने के लिए उनको सब लोगों को लेकर वो गौलोक वृंदावन गए, अपने घर गए, सबको वहां पर छोड़ के आए ब्रजवासियों को, फिर नीचे आए, फिर द्वारका गए, फिर उनका सबका यादव कुल का नाश हो गया, और फिर भगवान स्वयं अंतर्धान हो गए। यही ब्रज की कथा है। मिलन से भी अधिक यहां पर इंतजार में और विरह में ज्यादा अनुभव है आनंद का, जो भगवान ने ब्रजवासियों को दिया। कि उसके बाद में भगवान ने जमुना को क्रॉस किया और भगवान भद्रवन, बेलवन, महावन, गोकुल में गए। उसके आगे एक वन है, इसका नाम है अग्रवन, जिसको आज कहते हैं आगरा। आगरा भी ब्रज है, अलीगढ़ भी ब्रज है। अलीगढ़ का मतलब क्या? अली यानी गोपी, जहां गोपियों का निवास है उसको नाम को अलीगढ़ कहते हैं। अली मतलब कोई मुसलमान नाम नहीं है, अलीगढ़ यानी अली, यानी अली यानी कविता में आपको वही शब्द मिलेगा अली नाम का, तो कृष्ण भगवान सखी को अली के नाम से पुकार रहे हैं। तो अग्रवन गए, अग्रवन में परशुराम जी का जन्म हुआ है। आपको पता था इस बात में? किसी को पता था? मुझे भी आज पहली बार पता चला, तो मैं पढ़ रहा था। तो अग्रवन में रेणुका ग्राम है, जहां पर रेणुका जी का घर है, चमद अग्नि और रेणुका जी पति पत्नी वहां पर रहा करते थे, तो वहां पर परशुराम जी का जन्म हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए, उन्होंने उस आश्रम का दर्शन किया, परशुराम के मंदिर का दर्शन किया, और फिर वहां से वो गोकुल आए, और गोकुल में उन्होंने वो जगह देखी जहां पर भगवान ने उखल में बंधे हुए कंडीशन के अंदर दो पेड़ों को गिराकर मुक्त कर दिया था। अभी दो पेड़ तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि तभी वो मुक्त हो गए ना, वो यमुनार्जुन पर्वत, यमुनार्जुन पेड़ वृक्ष। लेकिन नंद भवन जो है उसके पास जाकर जिस जगह पर वो उखल बंधन हुआ, अभी भी वो स्थान है। अभी भी आप गोकुल में जाएंगे तो आपको वो स्थान मिलेगा जहां पर भगवान को उखल से बांध दिया गया था, और वो यशोदा माता जी का जो घर है वहां का गोकुल का, उसके नीचे ही है वो, बीच में कुआं है जहां से यशोदा रानी जल निकाला करती थी, उसके नीचे ये जगह है उखल बंधन का। वहां पर जाकर चैतन्य महाप्रभु बहुत व्याकुल हो गए, उन लीला को उन्होंने याद किया, कैसे भगवान ने बालक बनकर उखल को बांधते हुए पेड़ को खींचकर दो देवताओं का उद्धार कर दिया था, जो कुबेर के बेटे थे, नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के दो कुबेर के बेटे, जो उन्मत्त हो गए थे उनके अहंकार को चूर करने के लिए। उनको नारद मुनि ने शाप दिया कि आप पेड़ बन जाओ, फिर वो जो बहुत नाराज हो गए कि हम पेड़ बनने वाले हैं, तो हमको जरा कुछ शाप दो, कुछ कंसेशन दो। नारद मुनि ने कहा जब भगवान आएंगे बालक बनकर तो उखल से बंधे जाएंगे, तब वो आपको खींचेंगे, आप गिर जाएंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, फिर आप पुनः अपने जगह पर चले जाओगे। फिर चैतन्य महाप्रभु मथुरा गए, और मथुरा जाने के बाद में ये जो आपकी घड़ी है ये बंद है, ये उसी समय पर है जब से आपने दिया है, दूसरी घड़ी दीजिए, ये ब्रज की घड़ी है, क्योंकि ब्रज में समय आगे ही नहीं बढ़ता है, समय वैसे रहता है हमेशा। तो ये ब्रज की घड़ी जो है उसका सेकंड काटा घूम रहा है, लेकिन बाकी का कुछ नहीं घूम रहा है, ले लो। देखो तो पौने 9 बज गए इधर, तो 7:30 बज रहे। हरे कृष्णा, आपका घड़ी क्या? तो आज भी लगता है ये कथा अधूरी रहेगी, कोई बात नहीं, थोड़ा बता देंगे आपको। उसके बाद में वो जमुना जी पार करके फिर वृंदावन आए, और उनको मिलने के लिए बहुत लोग आने लगे। सब लोग उनका सर्वेंट था बलभद्र भट्टाचार्य, उसके पास इतनी रिक्वेस्ट आने लगी हमारे घर में महाप्रभु को खाने को बुलाओ, जैसे हमारे घर में गुरु महाराज को बुलाओ। सर पीछे लगते ना सर, भगवान गुरु महाराज के सेवक होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक एक दिन में चार चार बार लोगों को चार चार जगह पर आएगा आमंत्रण, तो कहाँ कहाँ जाएंगे गुरुदेव खाना खाने के लिए। हमारे घर में लंच भी आओ, हमारे घर में लंच भी आओ। वर्णन आता है कि 20-20 लोगों के एक दिन में आमंत्रण आते थे, तो उनको एक को हाँ बोलना है, 19 लोगों को ना बोलना है, कितनी बड़ी परेशानी। तो रोज बलभद्र भट्टाचार्य उनके रिक्वेस्ट से, अपनी विनतियों से परेशान हो जाते थे। फिर भगवान को एकांत की इच्छा, भगवान मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अक्रूर घाट जाऊंगा, वहां एकांत में भजन करूंगा। वो अक्रूर घाट गए और वहां से चलकर वो इमली तला आते थे, जहां पर कृष्ण भगवान बैठकर स्वर्ण कांति गौरवर्ण के हुए थे ना, कल बताया था कहानी आपको, वहां पर चैतन्य महाप्रभु गौरवर्ण के आकर बैठते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जमुना जी को निहारते हुए, जमुना जी से आने वाले ठंडी ठंडी हवा को अनुभव करते हुए, भगवान कृष्ण के जमुना में की हुई लीला को याद करते हुए, वो हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जप किया करते थे वहां पर एकांत में बैठकर, और जप में इतने मग्न हुआ करते थे कि वो स्वर्ण कांति गौर रंग के चैतन्य महाप्रभु सांवले रंग के बनते थे। जब ऐसा करना चाहिए, हाँ जब चल रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आज लंच में क्या बना रहे हैं, आज चावल की खीर बन रही है, आज समोसा क्यों नहीं बना रहे हैं, आज तो पूर्णिमा का दिन है, हाँ कहाँ भंडारा हो रहा है, कहाँ लड़ुआ मिल रहे हैं, ये हमारा जप है। आज काम पे जाने के बाद क्या करेंगे, कैसे बॉस को चीटिंग करेंगे और सो जाएंगे, ये बोल के जाएंगे वो बोल के जाएंगे, शाम को घूमने जाना है, ये सब विचार मन में आते हैं। दुनिया भर के विचार जो है ना, जो दुनिया दिन भर नहीं आते वो जप के समय आ जाते हैं। माया देवी जो है वो हमारा वीक पॉइंट जानते हैं अच्छी तरह से। चैतन्य महाप्रभु ने जो जप किया था उतना एकाग्र इतना एकाग्र, जैसे होता है ना वो होता है ना लेंस होता है ना लेंस, उसमें सूरज की किरणें कहां कैसे होता है ऐसे आके यहां पर मिल जाती है, देखा ना अपने पॉइंट लेंस, वहां पर माचिस का मस्टिक रखोगे तुरंत वो जल जाएगा, क्योंकि ये जो किरण है इनकी जो गर्मी है वो एकत्र हो जाती है वहां पर, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो वहां पर माचिस लगती है तुरंत अग्नि उत्पन्न होती है। वैसे ही जो पैरेलल हमारे विचार चल रहे हैं वो सब एकत्र करके एकाग्र करके भगवान पर केंद्रित करना है। जब ऐसा जब होगा तो दिल में वो दीपक जलेगा प्रेम का, भगवान के प्रेम का। तो वैसे भगवान ने वहां पर जब किया, क्यों किया, हमको दिखाने के लिए कि जब कैसे करना होता है, जब कैसे करना चाहिए, आदर्श जब का स्थली पद्धति क्या है, ऐसा एकाग्र होना चाहिए कि जब हमको कृष्णमय होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु भक्त बनकर आए, स्वयं कृष्ण भगवान के भक्त बनकर आए और स्वयं कृष्णमय हो गए। कुछ देर बाद भक्त आके उनको मिलते थे तो पूर्ववत हो जाते थे, धीरे धीरे वापस गौरवर्ण के बन जाते थे, फिर जाकर अक्रूर घाट में विश्राम करते थे और लंच लेते थे। फिर वहां से वो अक्रूर घाट से जब इमली तला में आते थे तो वहां पर वो एक जगह है द्वादश आदित्य टील, जब भगवान ने कालिया को मर्दन किया, कालिया का अहंकार चूर किया, तो बहुत देर जमुना जी के अंदर रहे वो ठंडे जल में, बहुत उनको ठंड लग रही थी। कालिया का मर्दन करने के बाद बाहर आए, इस थोड़े से पर्वत पर चढ़े तो 12 सूर्य वहां पर आए, भगवान को उन्होंने उष्णता दिया गर्म करने के लिए, जैसे हीटर लगाया ना वैसे, तो भगवान को दिव्य स्वेद आया और वहां पर प्रस्कंदन सरोवर तैयार हो गया। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु गए, फिर वहां से केशीघाट गए, यहां पर भगवान ने रासलीला किया था और रासलीला का ध्यान करते ही चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए वहां। फिर उसको बलभद्र भट्टाचार्य ने उनको उठाया, उनके कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर फिर याद करके फिर बेहोश हो गए, रोमांच होने लगे, लोटपोट होने लगे जमीन पर रासलीला का दर्शन करते हुए। फिर चीरघाट गए जहां पर भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, चीर चुराया था, वहां पर जाके उन्होंने कीर्तन किया। उसके बाद में वो इमली तला वापस आए जब करने के लिए, तो वहां पर एक राजपूत आया जिसका नाम था कृष्णदास राजपूत, क्षत्रिय था, बहुत पावरफुल था लेकिन भगवान का भक्त था। वो आकर महाप्रभु को मिलके ही भाग भाग के आया, बोला महाप्रभु जी मुझे कल रात में स्वप्न आया था किसी पेड़ के नीचे बैठकर कृष्ण भगवान जप कर रहे हैं। एक्चुअली वास्तविक दर्शन था वो, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे बैठकर कृष्ण भगवान दर्शन किया था, जप किया था। और उसी पेड़ के नीचे बैठकर अभी चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो भी जप कर रहे हैं। तो महाप्रभु चैतन्य ने उसके भाव को देखकर उसको गले लगाया प्रेम से, जैसे गले लगाया अनंत प्रेम कृष्ण के प्रति इस राजपूत के हृदय में उत्पन्न हुआ और वो खुद बेहोश हो गया अति आनंद का अनुभव करते हुए। उसी समय उसने अपना परिवार राज्य सब कुछ छोड़ के वहीं पर चैतन्य महाप्रभु को फुल टाइम ज्वाइन हो गए। तभी बलभद्र भट्टाचार्य सनोडिया ब्राह्मण और तीसरा व्यक्ति कौन हो गया कृष्णदास राजपूत, ये सब भगवान के साथ रहने लगे। तो उस समय 2 महीने वहां पर टोटल महाप्रभु जी रहे और इमली कला में जप करते के समय पर उन्होंने वहां के सभी ब्रजवासियों को भगवान के नाम का जो शास्त्र है वो पढ़ाया, भगवान के नाम की महिमा पढ़ाई सब ब्रजवासियों के द्वारा। उन्होंने जैसे हम लोग करते ना कॉन्फ्रेंस और सेमिनार करते ना वर्कशॉप करते हैं भगवान के हरिनाम वर्कशॉप, इस आश्रम में राधा माधव आश्रम में हर साल 2 या 3 बार 50 से 70 भक्त लोग एकत्र होते हैं और हमारे जो इस्कॉन के बड़े बड़े गुरु हैं जैसे गुरुजन प्रभु हैं, सचिदानंदन महाराज हैं, गिरिराज महाराज हैं, वो यहाँ पर आके जपा रिट्रीट करते हैं। इसमें फुल डे 8 घंटा जो है जप के बारे में चर्चा होती है और जप के बारे में वर्कशॉप होता है और भगवान के हम सब भक्तों को वो जप कैसे अधिक अधिक अच्छी तरह से करना चाहिए उसके बारे में शिक्षा देते हैं। कम से कम 4-5-6 दिन का होता है फुल टाइम और जप के विषय में बहुत चर्चा होती है बहुत गहराई में। 2 महीने तक चैतन्य महाप्रभु ने इमली तला में बैठकर ब्रजवासियों को हरिनाम के ऊपर सेमिनार दिया। उस समय एक अफवाह उठी वहां पर, चैतन्य महाप्रभु तो भक्त है भगवान के भक्त बनकर आए हैं, तो अफवाह उठी कि अरे कालिया घाट पे कृष्ण का अवतार हो रहा है, वहां पर रोज शाम को कृष्ण भगवान दर्शन देते हैं। तो बलभद्र ने कहा महाप्रभु जी मैं भी जाऊं देखने के लिए, मुझे भी देखना है कृष्ण को। तो भगवान ने वो डांटा उसको, तो तुम भी उन पागलों की तरह हो जो माया के मुंह में समझते हो कि कृष्ण आए हैं, ये कृष्ण आने का समय नहीं है, कृष्ण तो अपर में आए थे। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, उन्होंने कहा वृंदावन में कभी भी अकेले घूमना नहीं आपको, ऐसे ही भटका देने वाली अफवाहें और बातें और गॉसिप्स वहां चलते रहते हैं। जाना है वृंदावन में तो भक्तों के संग में जाना चाहिए, जाना है वृंदावन में तो गुरु के संग में जाना चाहिए, अगर जाना ही है दर्शन करने के लिए तो किस सीनियर भक्तों को लेकर जाना चाहिए जो वृंदावन को जानता है, उसके संग में ही रहकर उसके संग में ही साधना करते हुए उसके संग में पवित्र स्थानों का दर्शन करना चाहिए। ये महाप्रभु ने बलभद्र को बताया और रोक लिया उसको, उसको बहुत टेम्पटेशन था कि जाना चाहिए जाना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद मालूम पड़ा सत्य क्या है, सत्य मालूम पड़ा कि जमुना जी ने रात में दीपक लगाकर एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाया करता था, तो इनको लगता था कि जो दीपक है वो कालिया नाग के ऊपर लगा हुआ मणि है। वहां पर बताया था ना आपको मैं सब बहकावे के लिए, आप बताना उसमें सब कैसे तो भूलभुलैया है, सब समझ गए कि सब भूलभुलैया था, वो काली नाविक वहां पर रात को दीपक लगाकर मछली पकड़ रहा। तो यहां पर हम आज की कथा समाप्त करते हैं और अगली कथा कल से करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात बताना यह जरूरी है कि आज माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा ये बहुत ही पवित्र दिन है, इतना पवित्र दिन है कि आज के दिन आप जो भी संकल्प लेंगे भगवान की सेवा में उसमें आपको यश प्राप्त हो जाएगा। जो लोग जप नहीं कर रहे हैं उनको आज जप करने का संकल्प लेना चाहिए, जो लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं उनको आज शास्त्र का अध्ययन करने का शुरुआत करना चाहिए। भगवान की सेवा में जो भी आप कर सकते हो, जैसे आज बीएससी के स्टूडेंट्स आज माघ पूर्णिमा का दिन वृंदावन में आए हैं, मैं आपकी लिए शुभकामना और प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे आज माघ पूर्णिमा में वृंदावन में आए हैं ब्रज में आए हैं हमेशा ऐसे ही ब्रज में आते रहें और भगवान के सुंदर सुंदर स्थानों का दर्शन करते रहें, क्योंकि तो आज के दिन आपका ब्रज में आगमन हो गया है, बहुत पवित्र आगमन, एक बहुत सुंदर कार्य ब्रज में प्रवेश करने का आज माघ पूर्णिमा में आपके जीवन में हुआ है, बहुत पवित्र कार्य। आज के दिन भगवान के परम सखा परम मित्र परम भक्त जो है नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ था माघ पूर्णिमा के दिन। नरोत्तम दास ठाकुर जो है केवल चैतन्य महाप्रभु के दिव्य कीर्तन से आकर्षित होकर उन्होंने जन्म लिया और इनके जन्म होने के कई साल पहले पद्मा नदी के पास जो आज बांग्लादेश में है खेतुड़ी ग्राम, उस समय भारतवर्ष में था, जब चैतन्य महाप्रभु खेतुड़ी ग्राम से गुजर रहे थे तो पद्मा नदी के किनारे से होके जा रहे थे तो वहीं सर वो नरोत्तम 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 करके चिल्लाने लगे, उनके साथ जितने भक्त थे उन्होंने कभी नरोत्तम का नाम नहीं सुना था, क्योंकि नरोत्तम नाम कोई भक्त उनके साथ में नहीं था। तो वो देखने लगे, अरे कोई नरोत्तम तो है नहीं हमारे बीच में, तो वो है नहीं। लेकिन इतना समझ गए वो कि नरोत्तम कोई बड़ा भक्त होगा, तो चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर होकर पागल की तरह नदी किनारे चिल्ला रहे। तो चैतन्य महाप्रभु फिर होश में आए तो उन्होंने सब भक्तों को बताया कि कुछ ही समय बाद मेरा परम भक्त नरोत्तम इस गांव में जन्म लेगा। और उस समय पद्मा नदी देवी को, जिसका जल प्रवाह हो रहा था, उसको उन्होंने आह्वान किया, तो नदी के जल से पद्मा नदी प्रकट हुई देवी के रूप में। उनके आदेश में महाप्रभु ने आदेश दिया, मेरा भक्त नरोत्तम जब जन्म लेगा तो वो आपकी नदी में स्नान करने आएगा। मैं आपकी नदी में अभी स्नान करने वाला हूँ, तो मेरे मन में जितना भी कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति है सब मैं आपके जल में छोड़ने वाला हूँ। वो आप एक धरोहर के रूप में आपको संभाल के रखना है। तो नरोत्तम जी आएंगे इस जल में स्नान करेंगे तो वो सारा प्रेम जो है वो आपको नरोत्तम के हृदय में स्थापित करना है। ट्रांसफर दिस लव एज अ गिफ्ट टू नरोत्तम माय डियर डिवोटी। भगवान ने वापस नदी में स्नान किया, यथावकाश चैतन्य महाप्रभु का लीला समाप्त हो गया, चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गया, अपने धाम में चले गए। उसके बाद नरोत्तम का जन्म हुआ है। नरोत्तम ऐसे जन्म से ही विरक्त थे, राजा के पुत्र थे वो, अगले बनने वाले राजा थे वो, स्वयं राजपुत्र थे, युवराज थे, लेकिन उनको जन्म से ही किसी भौतिक कार्यों में वस्तु में उनको रुचि नहीं थी, इतना विरक्त थे। तो एक दिन घूमते घामते ऐसे ही पद्मा नदी किनारे आ गए, स्नान करने उतरे, जैसे ही स्नान करने उतरे पद्मा नदी प्रकट हो गई और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, जो अंतर्धान हो गए थे फिर भी प्रकट हो गए, और नरोत्तम को गले लगाया उन्होंने। जैसे गले लगाया पद्मा नदी ने महाप्रभु जी का सारा प्रेम नरोत्तम के हृदय में प्रस्थापित कर दिया। नरोत्तम वही गौर वर्ण का होकर बेहोश हो गए जल के अंदर। वो सांवले रंग के थे, कायस्थ जाति के थे, वो गोरे रंग के नहीं थे। जैसे ही महाप्रभु ने उनको आलिंगन दिया वो गोरे रंग के होकर चमकने लगे, तो वहीं किनारे में बेहोश होकर गिर गए। कई दिन का घर लौट के नहीं गए वो, क्योंकि उनको होश में होश ही नहीं था। कई दिन बेहोश रहे अति आनंद में प्रेम में। फिर ढूंढे ढूंढे उनके पिताजी माताजी सब सैनिक लोग आए, देखा तो किनारे में पड़े हुए हैं और पहचाना भी उन्होंने पहले, क्योंकि उनका रंग जो अलग हो गया था पूरा। फिर उसको पानी डालकर सब कुछ होश में लाया गया, फिर दोबारा उनका रंग वैसे हो गया जैसे पहले था। तब से वो और भी अधिक विरक्त हो गए। यथावकाश तो एक बार उनके माता पिता किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए दूसरे गांव चले गए थे, वे घर से भाग गए और श्री वृंदावन में आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न दिया, तो स्वप्न में कहा वृंदावन जाओ, वहां लोकनाथ जी गोस्वामी से आपको दीक्षा लेना है, वहां के गुरु हैं, वो वृंदावन में है। तो गुरु की दीक्षा प्राप्त करने के लिए वृंदावन आए। वही जो खदेर वर्णन है यहाँ पर, जिसका मैंने आपको वर्णन किया, जहां बकासुर का वध किया, वहां पर लोकनाथ जी महाराज रहते थे, एकांत भजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं इसलिए लोकनाथ जी बहुत व्याकुल हो गए थे, विरह में इतने व्याकुल थे कि दिन रात रोते थे महाप्रभु जी की याद में। तो उनके पास खदेर वन में गए नरोत्तम जी, उन्होंने कहा कि आपको दीक्षा लेनी है हमको। सब इतिहास बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, महाप्रभु जी आए, उन्होंने गले लगाया, महाप्रभु ने स्वप्न दिया, उसमें बताया कि वृंदावन जाओ आपसे दीक्षा ले लो। तो लोकनाथ जी कहते हैं अरे जिनकी विरह में मैं व्याकुल हूं वो स्वयं आपके आपको आके आलिंगन देते हैं, आपके स्वप्न में आकर आदेश देते हैं, आप मेरे से महान हो, मेरे गुरु बनने के योग्य हो, और तुम कह रहे हो मुझे दीक्षा दो मेरे गुरु बनो, ये मुमकिन नहीं है, आप चले जाओ, मैं दीक्षा नहीं दे सकता आपको, जैसे मेरी स्थिति नहीं है आपकी देखभाल करने की। दोबारा गए नरोत्तम जी, क्योंकि महाप्रभु भगवान का आदेश था कि इनसे दीक्षा लो। दोबारा गए तो बोले एक कोटि जप करके आओ। एक कोटि जप करना एक साल के अंदर बहुत नामुमकिन चीज है, लेकिन एकाध घंटा ही सोकर दिन रात नरोत्तम जी ने एक साल भर भगवान के नाम का भजन किया और एक कोटि जप पूरा किया और लौट के गए वापस। उस समय भी एक कोटि जप करने के बाद भी लोकनाथ जी ने उनको दीक्षा देने को इनकार कर दिया। फिर वो समझ सोचे कि हम कुछ सेवा करेंगे इनकी, दीक्षा दे या ना दे हम उनके शिष्य बन के रहेंगे। तो वो रोज जाकर लोकनाथ महाराज जी जहां पर शौच किया करते थे सुबह जाकर जंगल में, उस जगह के और शौच को साफ करके रखते थे, और पानी ला के रखते थे वहां पर। रोज जब भोर के अंधेरे में जाते थे लोकनाथ जी महाराज शौच करने के लिए, तो वहां पर जगह साफ और जल वहां पर उनको मिलता था रोज। तो लोग कौन सेवा कर रहा है इतनी भली सुबह में ठंड में आकर, तो शौच का बहाना करके क्यों गए, और शौच करने नहीं गए, जंगल में जाके छुप गए। तो क्या देखते हैं नरोत्तम जी राजपुत्र केतुड़ी ग्राम के राजा के होने वाले, मतलब वो राजा बनने वाले थे लेकिन छोड़ के आ गए। राजपुत्र जो राजा बनने के योग्य जो व्यक्ति है वो वहां पर मुझ जैसे फकीर का शौच साफ कर रहे हैं और वहां पर जगह साफ करके जल रख रहे हैं। जाके पीछे से जाके गले लगाते हैं उसको, नरोत्तम क्यों कर रहे हैं ऐसा, तुम राजा के पुत्र हो तुम, ऐसे मेरे जैसे फकीर आदमी की क्यों सेवा कर रहे हो, मैं इसके योग्य नहीं हूं। तो नरोत्तम जी कहते हैं क्या लाभ है मेरा राजा के पुत्र होने का, जब मेरे पर गुरु की कृपा नहीं हो सकती है, गुरु नहीं मिल सकते, दीक्षा नहीं मिल सकती है, तो मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। आप मुझे कुछ सेवा नहीं दे रहे, आप इतने व्यर्थ है कि आपके लिए मैं कुछ भी सेवा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये सेवा कर। तो उनका सेवा का भाव देखकर लोकनाथ जी महाराज ने उनको वही प्रतीक्षा दे दिया खदीर वन में, और एक ही शिष्य उनका लोकनाथ जी महाराज का नरोत्तम दास ठाकुर। सेवा की पराकाष्ठा है नरोत्तम दास, वो इतने विरक्त बाबा थे कि उनके जीवन में कोई जरूरत नहीं थी उनको कि क्या सेवा खाना कब बना के खिलाए या कुछ करें, ऐसे थे वो कि उनकी कोई सेवा ही नहीं कर सकता, ऐसे कोई जरूरत ही नहीं थी उनका, फिर भी सेवा करने वाले को हमेशा सेवा प्राप्त हो जाती है, याद रखना इस बात। ऐसे कहा गया कि आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो किसी बिजी व्यक्ति को ढूंढिए आप, उसको काम दीजिए, क्योंकि जो आदमी बिजी होता है जो सेवा करने में इंटरेस्ट होता है वही बिजी होने पर वो काम कर सकता है, और कोई खाली बैठा है उसको जाके देंगे तो वो नहीं कर सकता है वो काम। सेवा करने वाले व्यक्ति को सेवा कैसे भी मिल जाती है। एक बार हनुमान जी को लक्ष्मण जी सीता जी शत्रुघ्न भरत ने सोचा कि अरे हनुमान जी सब कितनी सेवा करते हैं, हमको कोई सेवा ही नहीं मिलती, तो उन्होंने सोचा कि अभी सब हनुमान की सेवा हम लोग ले लेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे सेवा सब, तो देखेंगे हनुमान जी क्या करते हैं। सब सेवा ले लिया, जितना हनुमान करते थे सारा सेवा सुबह से रात तक सब सेवा ले लिया उनका। फिर भी हनुमान जी आए बोले कि हम ऐसी सेवा करेंगे अभी कि भगवान जब जमाए देंगे ना तो हम चुटकी बजाएंगे। तो बोले कि अभी जमाई कभी भी आ सकती है ना, ऑन ड्यूटी आ सकती है, बिफोर ड्यूटी आ सकती है, एनी टाइम आ सकती है, तो ये हर समय भगवान के साथ में, पहले इतने नहीं थे, अभी तो 24 घंटे भगवान के साथ में है कि कभी आ करके जमाई दिया चुटकी बजा सकते। तो इन्होंने सोचा था, इन्होंने सोचकर ही प्लानिंग किया था कि भगवान से इनको अलग किया जाए, दिन भर उनके साथ में रहते। सारी सेवा बांटने के बाद भी उन्होंने ऐसा सेवा ले लिया कि हमेशा भगवान के साथ में बैठकर वेट कर रहे, कभी आ करें कभी चुटकी बजा। तो सेवा भाव जो होता है ना वो ऐसा होता है, जिसको सेवा करनी होती है उसको सेवा कभी भी कमी नहीं होती उस सेवा की। हमको भी हम बरसाने में आए तो सेवा करने आए, हमको सेवा करना चाहिए ब्रजवासियों का, तब जाके भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और सेवा ऐसे करनी चाहिए हृदय से लगन से और मन से, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं। वो सेवा बड़ी है कि छोटी है कि न्यून है कि डायरेक्टर की सेवा है कि डॉक्टर की सेवा है, ऑपरेशन की है कि साफ सफाई की है कि सब्जी काटने की है, ये सेवा कौन सी है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सेवा कैसे भाव से आप कर रहे हैं उसको भगवान देखते हैं। कहने मैं डॉक्टर हूं, मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं तो सब व्यवस्था देखता हूं, वही तो झाड़ू वाला है, ऐसा नहीं होता। सेवा का जो सार है वो भगवान स्वीकार करते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान का नाम भावग्राही जनार्दन पे रखा गया है क्योंकि आपकी सेवा के जो अंदर भाव है उसको वो लेते हैं, वो भाव से वो प्रभावित होते हैं या प्रभावित नहीं होते। सेवा के माध्यम जितना सेवा बड़ा कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं इससे वो प्रभावित नहीं होते, कौन सी भावना से कर रहे हैं वो भावना से वो प्रसन्न हो जाते। तो नरोत्तम दास ठाकुर की तो बहुत सारी कथाएं हैं, अभी समय नहीं है अभी और बार बताएंगे आप। तो नरोत्तम दास महाराज को हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, उनके आविर्भाव के दिन उन्होंने भगवान को बहुत दिव्य आनंद दिया है अपनी सेवा के माध्यम से, बहुत सारे भजन लिखे हैं, उनका भजन संग्रह प्रार्थना नाम का बहुत प्रसिद्ध है, आज भी कौड़ीय संप्रदाय में उनके भजन बड़े प्रेम से गाए जाते हैं, बहुत उत्कट भाव उन्होंने अपनी कविता में प्रकट किए हैं, और बहुत सुंदरता से भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो उपदेश है उसका प्रचार किया है। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के इतिहास में नरोत्तम दास ठाकुर जी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। आज के दिन हम नरोत्तम दास ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, कि उनका जो सेवा भाव है उसका कर्ण मात्र सेवा भाव हमारे अंदर भी प्रवेश करें और हम भी चैतन्य महाप्रभु को वैसे ही आकर्षित कर सकें जैसे वो कर पाए थे। नरोत्तमदास ठाकुर जी महाराज की जय। तो अभी एक सूचना यह है कि हमारे कैंप में सुखावा माता जी सेवा करती हैं, तो उनके अंकल हेनरी वो इतवार के दिन नित्यानंद त्रयोदशी थी 5 तारीख को बुढ़ापे की वजह से उनका देहांत हो गया। उसी के साथ साथ 3 जवान भक्त लोग न्यू वृंदावन में कार एक्सीडेंट में गुजर गए 31 जनवरी को, निताई दास, यदु और भक्ता टीम। तो आज विनती की गई कि आज जो हम कीर्तन करेंगे 5 मिनट के लिए वो इन तीनों के तिरुभाव के और सुखावा माता जी के अंकल के मृत्यु के अवसर पर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, आज का कीर्तन उनके लिए अर्पण करेंगे। हरे कृष्ण हरमोहन लिखे जय श्री राधे।